शब्दार्थ अतः अतएव तत् उस अपवाद अर्थम छुटकारा पाने के लिए बजा भक्ति में लगो सर्व आत्मना अपनी सारी इंद्रिया सहित हरि श्री भगवान को पश्चान देखते हुए तत् भगवान का आत्मकम वश में विश्वम दृश्य जगत स्थिति पालन उत्पत्ति सृष्टि अप्यया तथा संहार यतः जिससे अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जय श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है, तुम्हें यहां सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के आधीन है। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। कृपया आप लोग पीछे दोहराने का कष्ट कीजिए, तुम्हें यहां सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही इस जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के आधीन है। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। तात्पर्य इस प्रकार है, भौतिक अवस्था में आत्मा साक्षात्कार अथवा अपने को ब्रह्मा या आत्मा मानना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि हम भगवत भक्ति स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान क्रमशः स्वयं को प्रकट करते हैं। इस प्रकार भक्तों को धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति का पता चल जाता है। हम रात्रि के अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते, यहाँ तक कि स्वयं को भी नहीं देख पाते, किंतु जब धूप रहती है तो न केवल सूर्य को अपितु इस संसार की सारी वस्तुओं को भी देखते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्णा कहते हैं, मया सक्ता मना पार्ता योगम युंजन्म दाश्रया असंशयम समुग्रम यता ज्ञाशा चित्तच्रनु। हे पार्थ, अब सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे पूरी तरह जान सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। जब हम कृष्ण भावना भावित होने के उद्देश्य से अपने आप को भगवत भक्ति में लगाते हैं तो हम न केवल कृष्ण को अपितु उनसे संबंधित प्रत्येक बात को समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण चेतना द्वारा न केवल कृष्ण तथा दृश्य जगत को अपितु अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी समझ जा सकते हैं। कृष्ण चेतना में रहकर हम यहाँ समझ सकते हैं इस सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन, इसका संहार श्री भगवान के द्वारा होता है। हम भी भगवान के भिन्न अंश है, उन्हीं के नियंत्रण में सारी वस्तुएं हैं। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाए और उनकी दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में लग जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्यस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मये श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशकान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्पकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद और दूसरा भाग का 29 अध्याय और 79 श्लोक नंबर। अतास्तदा पवादार्थम भज सर्वात्मना हरिम पश्चास्ताध्यात्मकम विश्वम स्थित्युत्पत्त्य पया यता। अर्थात इसका अनुवाद में समझा रहे कि तुम्हें सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन है। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। नारद मुनि जी प्राचीन बरही को ये समझा रहे हैं कि ये जो सृष्टि है इसका सृष्टिकर्ता कौन है। बता रहे कि भगवान स्वयं, और पालन भी वही करता है और इसका नाश भी वही करता है। भगवान ही सबका कारण का कारण भगवान है। ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सबका कारण का कारण भगवान है। तो इसलिए यहां पर नारद मुनि जी बता रहे कि इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। इस ज्ञान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं? भगवान का भक्ति में लगकर, अर्थात भगवान का सेवा। भक्ति मतलब भगवान का संबंधित कार्य करना, भगवान का संबंधित सुनना, भगवान का संबंधित बोलना, ये भक्ति है भगवान का। ये करते करते हम भगवान को जान सकते हैं। यहां पर बता रहे मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद जी समझा रहे तात्पर्य में, भौतिक अवस्था में आत्मा साक्षात्कार अथवा अपने को ब्रह्म या आत्मा मानना अत्यंत कठिन है। भौतिक संसार का लोग ये नहीं समझते कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश है। तो भौतिक ज्ञान किसके पास है वो शरीर का भारी में समझते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारा विश्वविद्यालय है, लेकिन सभी विश्वविद्यालय में केवल शरीर का ज्ञान देते हैं, आत्मा के बारे में कोई ज्ञान देने वाला कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तो इसलिए नारद मुनि यहां पर बता रहे कि अगर भगवान का इस ज्ञान को प्राप्त करना है, भगवान का भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो आगे बता रहे प्रभुपाद जी, किंतु यदि हम भगवत भक्ति स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान क्रमशः स्वयं को प्रकट करते हैं। श्री श्री गौणिताय भगवान की, श्री श्री राधाराश्वर ललित विशाखा जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की। किंतु यदि हम भगवत भक्ति स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान क्रमशः स्वयं को प्रकट कर लेते हैं। इस प्रकार भक्तों को धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति का पता चल जाता है। तुरंत हम भक्ति मार्ग में आया तो तुरंत हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, ये सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम साधना करते करते भगवान को, भगवान का ज्ञान को, भगवान की सृष्टि को, भगवान का और हमारा क्या संबंध है, इसको हम समझ सकते हैं धीरे धीरे यहां पर बताया। इसलिए साधना भक्ति करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ये सिस्टम बनाया, संस्था का स्थापना किया और भक्तों को ये नियम बनाया, सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, मंगल आरती अटेंड करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का स्तुति करना, हाँ भगवान का नाम का जप करना, हाँ भागवतम क्लास सुनना, ये सब सिस्टमेटिकली, और उसके बाद प्रसाद, उसके बाद सेवा, उसके बाद फिर शाम को हाँ संध्या आरती, भगवद गीता क्लास, भक्ति रसम सिंधु क्लास, उपदेश अमृत क्लास, कृष्णा बुक पढ़ना, ये सब सिस्टम बने प्रभुपाद जी। क्यों? क्योंकि जो आया है संस्था में उसको लाभ मिले आध्यात्मिक, इसीलिए। तो यहां पर बता रहे कि धीरे धीरे फिर भगवान को पूर्ण रूप से समझ सकता है, ये समझने के लिए सिस्टम बनाया, नियम बनाया। तो अगर हम दृढ़ता से इसका पालन करेंगे तो हम भी भगवान को धीरे धीरे समझ सकते हैं। तो अगर हम सही में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे, इस प्रकार भक्तों को धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति का पता चल जाता है। हम रात्रि के अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे, जैसे रात होता है हम कुछ नहीं देख सकते, लाइट चाहिए है कि नहीं, टॉर्च चाहिए तब देख सकते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हम अपने को भी नहीं देख सकते हैं अंधेरा में, हमारा हाथ किधर है, उंगली किधर है, देख नहीं सकते हैं इतना अंधेरे में। लेकिन लाइट बटन चालू करेंगे, लाइट आएगा तो हम देख सकते हैं। उसी प्रकार यहां पर बता रहे, अगर ये ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो भगवान को देख सकते हैं। ज्ञान नहीं है, हम भगवान का सेवा में नहीं जुड़ जाते हैं तो ये संभव नहीं है। तो यहां पर बता रहे कि यहां तक कि स्वयं को भी नहीं देख पाते, किंतु जब धूप रहती है तो ना केवल सूर्य को अपितु तो इस संसार की सारी वस्तुओं को भी देख सकते हैं। जैसा सूर्य उदय होता है, लाइट का जरूरत नहीं, लाइट का बटन बंद कर देते हैं तो क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक हम देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश से। तो इसलिए प्रभुपाद जी आगे भी बता रहे, भगवद गीता में भगवान कृष्णा कहते हैं, हे पार्थ अब सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझ पूरी तरह ज्ञान जान सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अर्जुन को बता रहे, अर्जुन के नहीं हम सबके लिए, तो उदार मतलब अर्जुन के एक निमित्त बनाया गया है। अब सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे पूरी तरह जान सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भगवान का भक्ति में हम लग जाते हैं, भगवान का बारे में हम सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तभी हमको अंदर से प्रेरणा मिलते हैं भगवान के बारे में जिज्ञास करने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए। तो ऐसा हम अंदर से भगवान ज्ञान भी देते हैं और बाहर से भी। तो इसलिए ये साधना भक्ति में सभी जीव को लगना चाहिए, तभी ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बता रहे, जब हम कृष्ण भावना भावित होने के उद्देश्य से अपने आप को भगवत भक्ति में लगाते हैं, तो हम ना केवल कृष्ण को अपितु उनसे संबंधित प्रत्येक बात को समझ लेते हैं। भगवत भक्ति में लगने से हम केवल कृष्ण को नहीं, भगवान को नहीं, भगवान का संबंधित, भगवान का मतलब भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान का संबंधित जो भी है हम जान सकते हैं। भगवान का सृष्टि क्या है, हाँ, भगवान कैसा पालन कर रहे हैं, भगवान कैसा इसका नाश कर रहे हैं, समझ सकते हैं, सभी बातें को बात को समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण चेतना द्वारा ना केवल कृष्ण तथा दृश्य जगत को अपितु अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी समझ सकता है, अर्थात हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, तो ये भी जान सकते हैं। कृष्ण चेतना में रहकर हम यहां समझ सकते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन तथा इसका संहार श्री भगवान के द्वारा होता है। ये सभी चीज भगवान का द्वारा ही होता है, भगवान इसका सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। सबका कारण का कारण भगवान ही है, सबका रसी भगवान का हाथ में है। तो इसलिए भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, जैसे यहां पर बता रहे हम भी भगवान का अंश है, जो हम मतलब आत्मा, सभी जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ज्ञान बहुत कम लोग देते हैं, केवल जो शुद्ध भक्त है भगवान का, शुद्ध वही लोग इस ज्ञान को देते हैं लोगों को, जैसा प्रभुपाद जी आगे बता रहे, उन्हीं के नियंत्रण में सारी वस्तुएं हैं, अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाए और उनकी दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में लग जाए। जीव का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करना, प्रेम पूर्वक मतलब भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान का सेवा करना। जीवेरे स्वरूप कृष्णरे नित्यदास, जीव का स्वरूप ही कृष्ण का नित्यदास। इसका अलावा हम कितना भी हम प्लान बनाएंगे सुखी होने के लिए, सुखी नहीं हो सकते। भगवान का सेवा का बिना, भगवान का भक्ति का बिना हम अलग सोचेंगे हम सुखी होंगे, तो कोई वस्तु कोई ऐसा जगह नहीं है हम सुखी होने के लिए। हम तो प्लान तो बहुत कुछ बनाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ दुख आते रहेंगे, लखपति हो अरबपति हो कोई भी हो, कुछ ना कुछ उसका पीछे दुख है, तकलीफ है। इसलिए जो भगवान का भक्ति में लग जाता है वो इस दुख से मुक्त हो सकता है धीरे धीरे हम साधना करने से। तो आज सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है, तो सनातन गोस्वामी जी भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिष्य है, शिष्यों में से एक है। सनातन गोस्वामी बंगाल में हुसैन शाह उसका मंत्री थे, तो लेकिन उनका अंदर से भाव था भगवान का सेवा करे, भगवान का प्रचार करे। तो इसको कैसा हम सफल करेंगे, उसका मन में था। लेकिन जो राजा था मुस्लिम था, इसका पास ये बात को बताने की जाएंगे तो तो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने आइडिया किया कि हम अभी नौकरी में नहीं जाए। तो नौकरी में जाने से इनकार कर दिया और घर में भागवत पढ़ने लगा। और जो हुसैन शाह कुछ मंत्रियों को भेजे, अरे सनातन गोस्वामी क्यों नहीं आए सेवक काम में, तो सनातन गोस्वामी बहाना बनाए कि हम बीमार है, हम जा नहीं सकते सेवक काम में। एक्चुअली उनको इच्छा नहीं था, हाँ भौतिक संसार में काम करना, इसलिए वो ऐसा प्लान बना दी। तो मंत्री लोग वापस जाके बोले राजा से, वो तो बीमार है, वो नहीं आ सकते हैं। तो राजा ने बोला ऐसा कैसा, इतना दिन बीमार है? तो जाके देखा तो ठीक ठाक। तो राजा ने बोला इसको जेल में डाल दो, ये बहाना बना रहे काम पे नहीं आ रहे, तो ये बहाना बना रहे, ये सब ठीक ठाक है, शरीर तंदुरुस्त है, इसका कोई बीमारी नहीं है, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया, बहुत दिन जेल में रहेगा। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी जेल से कैसा निकले, हाँ जेल में रहेगा तो हम भगवान का भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते, प्रचार नहीं कर सकते, और चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं मिलेगा तो हम क्या करो। वो जेलर जो था, वो क्या बोलते हैं सुपरिटेंडेंट, तो उसको जो सोना का मुद्रा था उनको लालच दिखाया, ये सोना का मुद्रा ले लो आप और मेरे को छोड़ दो। तब जो राजा था वो किधर घूमने के लिए गए थे, फिर भी जो सुपरिटेंडेंट था वो इनकार कर दिया, अभी आपको मैं छोड़ देंगे, मेरे को फांसी लगा देगा राजा आने के बाद, वापस आने के बाद, नहीं नहीं कर सकते ऐसा। तो बोले नहीं 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 कुछ नहीं होगा, आप बोलो, वो गंगा में खुद के मर गए हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। फिर वो स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो मुद्रा ले लिया और सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया जेल से। सनातन गोस्वामी चल पड़े चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। चैतन्य महाप्रभु उस टाइम प्रयाग में थे, वहां पर चंद्रशेखर आचार्य जी घर में ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी चल पड़े और रास्ता में अंधेरा हो गया, उसका एक सर्वेंट भी था, तो रुकना पड़ा रात को, कैसे जंगल है, पहाड़ है, पहले के जैसे रास्ता नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, है कि नहीं, ऐसे जंगल में चलना पड़ता है। एक सर्वेंट भी था उसका साथ। तो रास्ते में क्या हुआ, एक होटल मिला अतिथि गृह रुकने के लिए। सनातन गोस्वामी जी सोचा अभी रात हो गया, अभी सर्वेंट से बताया कि हम यहां पर रुकेंगे, तो सर्वेंट बोला ठीक है रुकेंगे। तो जो अतिथि गृह का जो मालिक था उसको पता चला कि इनका बस सोना का मुद्रा है आठ, तो इसको चुराना चाहिए। तो कैसा चुराएंगे, ऐसा प्लान बना रहा था। तो सनातन गोस्वामी जी को पता लगा कि हमारा आज कत्ल होने वाला है, हमको मार देंगे, हमारा जो धन है ले लेंगे। तो हमारे पास धन है क्या, सर्वेंट को पूछा, तो सर्वेंट बोला हां धन है, सात मुद्रा है, वो आठ नहीं बताया, सात ही बताया। तो तुरंत वो सनातन गोस्वामी सर्वेंट से मुद्राएं ले लिए, जो अतिथि ग्रह का जो मालिक था उसको लेके जाके दे दिया। तो अतिथि का जो मालिक था वो बोले अरे मैं तो प्लान बना रहा था कि आपको मार के ये लेना है, तो आप स्वयं लाके दिया, क्षमा मांगे। अरे अरे मेरा सोचना गलत हो गया। तो आप फिर बोला नहीं नहीं आप ही रखिए, हमको जरूरत नहीं है। बोला नहीं 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 अगर मैं रखेंगे जैसा आप प्लान बनाया मेरे को मार के लेने के लिए, और कोई मार के ले लेंगे, उससे अच्छा आप ही ले लो। मेरे को यहां से आगे जाना है तो वहां तक जाने के लिए कुछ व्यवस्था बना दीजिए। तो क्षमा मांगा, मेरा गलती हो गया। फिर उनको सनातन गोस्वामी जी को जो चैतन्य महाप्रभु को पास जाने के लिए व्यवस्था बना दी, कोई चोर डाक उसको लूटे नहीं, तकलीफ ना दे। तो वहां पर जाते ही उसका एक सगा संबंध थे, उसका नाम था श्रीकांत। तो उनका पास गए और उसको बहुत स्वागत किया और उनको एक अच्छा चादर दे दी पहनने के लिए। सगा संबंधी गिफ्ट देते उपहार। तो सनातन गोस्वामी इनकार कर दिया, फिर भी लेके गया, उसका अतिथि स्वीकार किया। तो चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य का घर पे ये ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, भगवत भक्ति के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि सनातन गोस्वामी जी आया है, तो उनको चंद्रशेखर जी को बताया कि आप बाहर जाओ, कोई वैष्णव आया है, उसको अंदर ले लो। तो सनातन गोस्वामी पटा थूटा कंबल पहन के ऐसे खड़े थे और वेशभूष भी, क्योंकि वो मुस्लिम राजा का साथ काम करता था, वेशभूष भी ऐसा लग रहा था कोई मुस्लिम है, तो ऐसा लग रहा था। चंद्रशेखर जी बाहर जाके देखा, कोई वैष्णव नहीं है, कोई तिलक नहीं, कोई सिक्का नहीं, कुछ नहीं है, कोई तो ऐसे तो एक मुस्लिम का जैसा वेश डाला है, तो वैष्णव नहीं है। तो वापस आके चैतन्य महाप्रभु को बताया कि अरे आपने बोला बाहर एक वैष्णव बैठा है, उसको अंदर ले, लेकिन मैं बाहर जाके देखा कोई वैष्णव नहीं है। अरे कोई तो बैठा होगा, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, कोई तो बैठा होगा। हाँ एक व्यक्ति बैठा है, तो मुस्लिम होगा ऐसा लग रहा है वेशभूष में, कोई सिक्का नहीं, कोई तिलक नहीं, कुछ नहीं, तो कोई भी हो, कोई तो बैठा है ना, उसको अंदर ले लो, अंदर लेके आओ। चैतन्य महाप्रभु ने तो फिर जाके चैतन्य महाप्रभु का आदेश को पालन करने के लिए चंद्रशेखर जी बाहर गए और जो सनातन गोस्वामी जी बैठे हुए थे उसको अंदर लिए। और चैतन्य महाप्रभु इतना खुश हो गए और सीधा जाके सनातन गोस्वामी जी को आलिंगन कर दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो सब जानते हैं। हाँ तो इसलिए सनातन गोस्वामी जी भगवान का पार्षद ही समझ लीजिए, साधारण भक्त नहीं है। तो इनका पद चिन्ह पे हम चलने से हम भी थोड़ा बहुत भक्ति कर सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं, हाँ भगवान का प्रचार कर सकते हैं। तो इसलिए ये तिथि को हम लोग मानते हैं, वैष्णव लोग जहाँ तिरोभाव तिथि आविर्भाव तिथि दोनों उत्सव मनाते हैं। वैष्णव लोग ये तिरोभाव तिथि आविर्भाव तिथि दोनों को उत्सव के रूप में मानते हैं। तो दूसरा बात है कि अभी जन्माष्टमी आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव तिथि है कि नहीं, कितना अगस्त 22 तारीख को। तो जैसे दिसंबर में गीता मैराथन होता है, ऐसा जन्माष्टमी मैराथन भी गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा बोलते थे। हाँ दिल्ली में नरसिंह जयंती मैराथन, जन्माष्टमी मैराथन, रथयात्रा मैराथन, हर टाइम मैराथन मैराथन होते हैं, इसलिए दिल्ली फर्स्ट आते हैं वर्ल्ड में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो हम लोग भी ये सब कर सकते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी एक किताब लिखे है, प्रचारी सार है, अगर इसको पढ़ेंगे हम थोड़ा भगवान का सेवा में मन लगा सकते हैं। मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूं। इस पुस्तक का नाम है प्रचारी सार है। प्रचार कार्य मंदिर निर्माण तथा अर्चा विग्रह पूजन, पुस्तक वितरण अर्चा विग्रह पूजन से अधिक महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई मंदिर या अर्चा विग्रह ना स्थापित करके एक व्यवहारिक उदाहरण स्थापित किया और संकीर्तन आंदोलन का व्यापक सूत्रपात किया। अतएव कृष्ण भवनामृत पुस्तकों को संकीर्तन आंदोलन पर अधिक बल देना चाहिए और विशेषतया दिव्य साहित्य का अधिक अधिक वितरण करना चाहिए। इससे संकीर्तन आंदोलन को बल मिलता है। जब भी अर्चा विग्रह पूजा की संभावना हो तब हम अनेक केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हमें दिव्य साहित्य के वितरण पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि लोगों को कृष्ण भवनामृत की ओर उन्मुख करने के लिए यहां अधिक प्रभावशाली होगा। प्रचार कार्य अर्चा पूजन से अधिक महत्वपूर्ण है। अर्चा विग्रह पूजा विशेषतया नवदीक्षित भक्तों की शुद्धि के लिए है, किंतु वास्तव में प्रचार कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में 18वां अध्याय 69 श्लोक में कहा गया है, नाचा तस्मान मनुष्येषो कश्चिन मे प्रियकृत्तम। यदि कोई भगवान से मान्यता चाहता है तो उसे भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति अर्चा विग्रह की पूजा करता है उससे चाहिए कि प्रचारकों का अत्यधिक सम्मान करे, अन्यथा केवल अर्चा विग्रह की पूजा करते रहने से वह भक्ति की निम्न अवस्था में रहता रहेगा। पुस्तकें लिखना, छापना और वितरित करना मंदिर निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ बृहद मृदंग को बजाने के तुल्य है। पुस्तकें लिखना और जनता को प्रबुद्ध बनाने के लिए उन्हें प्रकाशित करना भगवान की असली सेवा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यह मत था और उन्होंने अपने शिष्यों से विशेष रूप से कहा कि वे पुस्तकें लिखे, वे मंदिर की स्थापना करने की अपेक्षा पुस्तकें प्रकाशित करना वस्तुतः श्रेयस्कर समझते थे। मंदिर निर्माण तो सामान्यतः जनता तथा नवदीक्षित भक्तों के लिए होता है, किंतु बड़े चढ़े तथा सत्याविष्ट भक्तों का कार्य पुस्तकें लिखना, उन्हें प्रकाशित करना और उनका चतुर्दिक वितरण करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार साहित्य का वितरण बृहद मृदंग को बजाने जैसा है। फलतः हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ के सदस्यों से सदैव अनुरोध करते रहते हैं कि वे अधिक से अधिक पुस्तक प्रकाशित करें और सारे जगत में उनका व्यापक वितरण करें। इस तरह श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य रूपानुगत भक्त बन सकता है। यहां पर प्रभुपाद जी पुस्तक वितरण में ज्यादा बल दिया है। मंदिर निर्माण जरूरी है, जैसा नया नया भक्त लोग आते हैं तो उसको शिक्षा देने के लिए, साधना करने के लिए ये जरूरी है, एक जगह चाहिए और पूजा पाठ करने के लिए भगवान का अर्चा विग्रह का। लेकिन यहां पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे, चैतन्य महाप्रभु कोई मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने गांव गांव नगर नगर जाकर भगवान का ज्ञान हरिनाम का प्रचार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि मंदिर निर्माण जो लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए और लोगों का कल्याण के लिए, और नया नया जो भक्त लोग आते हैं तो उसको साधना करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, ये सब पूजा अर्चना जो भी मंदिर में आश्रम में सेवा होता है शुद्धिकरण के लिए। लेकिन जो बड़े चढ़े भक्त है उस उसको बाहर जाकर भगवान का एक ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे पुस्तक वितरण, प्रचार मतलब प्रभुपाद जी एक जगह में बता रहे, प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा, आपका 3 मिनट का लेक्चर में क्या होगा, मेरा पुस्तक वितरण करो। प्रेसिडेंट को बोल रहे रामेश्वर प्रभु से कुछ नाम है, रामेश्वर महाराज ऐसे, उनको बता रहे कि 3 मिनट का आपका लेक्चर में कुछ नहीं होगा, बाहर जाकर पुस्तक वितरण को, मेरा पुस्तक वितरण करो। पुस्तक तो बहुत कुछ है लेकिन मेरा पुस्तक वितरण करो। तो इसलिए जो भी हम प्रभुपाद जी का छायाचित्र में है, प्रभुपाद जी का इस आंदोलन में है चैतन्य महाप्रभु का, तो हमको इसमें प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी का बात को सहयोग देना चाहिए, प्रभुपाद जी का इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए यहां पर बता रहे कि भगवान भी उसको मान्यता देता है, भगवान का जो ज्ञान का प्रचार करते बाहर जाकर तो उसको भगवान भी मान्यता देता है। 18वां अध्याय में 69 श्लोक में बताया कि उससे अधिक कोई मेरा भक्त नहीं है प्रिया। भगवान को तो सभी प्रिय है, भगवान को कोई दुश्मन नहीं है, सभी लोग प्रिय है भगवान को, लेकिन भगवान का जो ज्ञान का वितरण करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो वो अधिक प्रिय है, उससे ज्यादा अधिक प्रिय कोई नहीं है, भगवान बता रहे। तो इसलिए हम भगवान का प्रिय बनना है तो भगवान का ये ज्ञान का प्रचार में हम सहयोग करना चाहिए। तो बीबीटी में कल मैं आनंद तीर्थ प्रभु से कुछ किताब चाहिए था और बात करने गया, बोला किताब बहुत फड़ा हुआ है, अभी बहुत बड़ा गोडाउन भी लिया भिवंडी में बीबीटी ने, तो बहुत किताब पड़ा हुआ है, तो लेकिन वितरण करने वाला कोई नहीं है हमारे पास। तो इसलिए क्या होगा, अभी बारिश आएगा तो गोडाउन में पानी जाएगा तो सड़ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। बारिश आएगा, कभी कभी बॉम्बे में बारिश आता है सब डूब जाता है, कार भी रोड में जाता है, कार भी फंस जाता है, डूब जाता है, उसका अंदर भी जो लोग रहते हैं मर जाते हैं। इसलिए किताब को बाहर निकलना चाहिए। एक बार विदेश में बीबीटी में बहुत किताब प्रिंटिंग हुआ और बहुत लोग प्रचार भी डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे, लेकिन प्रिंटिंग करने वाला ज्यादा पास्ट में जा रहे थे, बीबीटी बहुत ज्यादा पास्ट में। तो प्रभुपाद जी को बताया बीबीटी का मैनेजर, अरे अभी बहुत किताब आ गए, अभी रखने की गुड़न में जागा नहीं है, क्या करो। प्रभुपाद जी बोले ब्रह्मचर्य आश्रम में पूरा भर दो। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भर देगा तो फिर ब्रह्मचर्य लोग कहां सोएंगे, कहां रहेंगे? अगर सोना है तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जागा हो जाएगा। तो हम लोग प्रभुपाद जी का जो मूड है तो हम समझना चाहिए, तो प्रभुपाद जी का किताब के द्वारा हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था। प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ प्रभुपाद जी का जो भावना है हम समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी का जो संस्था, प्रभुपाद जी ने संस्था स्थापन किया इसमें आया है हम लोग, तो इसमें हम प्रभुपाद जी का जो इच्छा है उसको साकार करने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी की इच्छा है ये प्रभुपाद जी का किताब का वितरण करना, क्योंकि प्रभुपाद जी का गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी उनको बताए थे राधा कुंड श्याम कुंड का बीच में, जैसा प्रभुपाद जी इलाहाबाद से गए थे अपना लड़का का साथ में, लड़का को लेके भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी उधर मिले और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी बताए कि देखो अभय, मैं कलकत्ता में बहुत बड़ा अभी मंदिर का निर्माण किया मार्बल का, लेकिन छोटा मंदिर था, भक्त लोग सब बाहर जाते थे, किताब मैगजीन वितरण करते थे, अभी बड़ा मंदिर हो गया, कोई बाहर नहीं जाना चाहता है, तो मेरा ये ऑफिस है, मेरा ये घर है, मेरा रूम है, मेरा ये जगह है, बोल के आपस में लड़ने लग रहे। तो अभय, आपको कभी पैसा मिले तब आप एक ही काम करना, पुस्तक भगवत भागवत भगवान का ज्ञान इसका पुस्तक का वितरण को छापो और वितरण करो, ये चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये बात को रखकर विदेश में जाने का टाइम केवल किताब लेके गया है कि नहीं, भागवतम, सुगम यात्रा, ये सब किताब लेके गए। तो उनका जो इच्छा था प्रचार कर, चैतन्य महाप्रभु का, भगवान का प्रचार करना, तो वो सफल हो गया कार्य। इसलिए पुस्तक वितरण में इतना हम बल मिलते हैं प्रचार के लिए। प्रचार मतलब भगवान का नाम देना, भगवान ज्ञान देना, वो भी प्रचार है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरा किताब का वितरण करो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रचार है। क्योंकि भगवान का जो संबंधित जो भी लिखा है प्रभुपाद जी, वो पूर्ण ज्ञान है, गुरु भी है और भगवान भी है इसमें। आप जो भी दे रहे किसी को भी, आप गुरु को भी दे रहे और भगवान को भी दे रहे, तो उसको दोनों मिल जाता है। तो गुरु उनको ज्ञान दे रहे, जो लिया उनको किसका ज्ञान दे रहे, भगवान का ज्ञान दे रहे। तो उसका एक दिन नहीं तो एक दिन वो भक्त बन जाएगा, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी का किताब का बहुत महत्व है। तो बहुत लोग किताब पढ़कर भक्त बने, और हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति महाराष्ट्र में, वो जैसा हफ्ता में मार्केट लगता, छोटे छोटे गांव में भी हफ्ता में एक मार्केट लगता है, एक हफ्ता का पूरा मार्केट, सब्जी अनाज सब एक ही दिन खरीद लेते हैं, और दूसरा हफ्ता के फिर दूसरा हफ्ता, एक पर्टिकुलर दिन रहता है, सोमवार हाँ संडे मार्केट, सोमवार को मार्केट, मंगलवार मार्केट, ऐसा अलग अलग जगह में अलग अलग। तो एक जगह में हम लोग मार्केट में स्टॉल लगाया प्रभुपाद जी का किताब का, तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया, महाराष्ट्र में ऐसा वो बड़ा लंबा कपड़ा है उसको ऐसा पेटा बांध देता है, तो ऐसा बांध के आया, और उसके साथ एक लड़का भी था। तो हम लोग स्टॉल लगाया था, ऐसा झुक के आया था, मतलब ओल्ड था, बहुत ज्यादा ओल्ड आया, और आया तो हम लोग सबको किताब देते है कि नहीं, वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई देखता नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, सबको दे। तो सबको दे रहे थे, उनको भी दिया, वो ले लिया, वो लेके फिर साइड में रख दिया, फिर दूसरा किताब दिया, जो भी किताब हम दिया वो साइड में रख दिया। तो अभी किताब खत्म हो गया हमारे पास, कितना भी वेराइटीज था, भागवतम था, पहला तो पूरा भागवतम आया नहीं मराठी, अभी भी पूरा नहीं हुआ लगता है, हाँ कृष्ण बुक था, भगवद गीता, हाँ आत्मा साक्षात्कार, जो भी ईशोपनिषद उपदेश हमारा सब किताब पूरा ऐसा रख दिया। मैं समझा ये क्या बात है, साइड में रख रहे, ऐसा लग रहा था कि बहुत गरीब है, कोई ऐसा वर्ल्ड है क्या लेगा, ऐसा सोच रहा था। तो सब लिया, लास्ट में मैं बोला अभी मराठी में इतने किताब है और नहीं है, तो बोला इतना कितना हो गया इसका, तभी कितना 650 कुछ हुआ था, मैं बोला 650 रुपये हो गए, तो वो ठीक है इसके बांध दो, नहीं बांध दो नहीं बोला, वो खुद ही वो अपना सिर से कपड़ा निकाला और सब किताब उसमें कपड़े में बांध दिया, और 650 कुछ था पैसा वो दे दिया। लड़का को बोला ये ले लो चलो, ओ बाबा बाबा, अरे हम तो सब्जी खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए आया, ये लेके घर में जाएगा क्या करेगा। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला सब्जी अनाज हर हफ्ता मिलेगा हमको, ये लोग कभी आएगा, ये किताब कभी मिलेगा हमको। तो इसलिए पहला जो मिलता है ये मेन चीज है, इसको ले लो हाँ चलो। फिर लड़का का सिर में रखा ऐसा लेके जा रहा, हम लोग को देखते, अरे हम सोचा नहीं इसकी किताब इतना किताब लेगा बोल के, लेकिन लिया बिना आर्गुमेंट से। तो ऐसा बहुत लोग हाँ मिलता है। यहां पर हम लोग स्टॉल लगाया था दो ये साल गया साल की बात है, एक परिवार आया पांच छह लोग, तो उनको किताब बताया, गीता बताया, भागवतम बताया। उन्होंने भागवतम आपके पास शर्ट है क्या पूछा, बोला हाँ है, तो भागवतम शर्ट दिया। वो बोला ठीक है कितना है इसका, तो जो भी रेट है दे दिया। बोला इसको, उसका लड़का ने बोला इसको पोस्ट में भेज दीजिए, हम एड्रेस देता हूँ। तो मैं बोला कहाँ रहते आप लोग, लखनऊ में रहते। तो ठीक है, अब भेजने का भी पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बोला हाँ ठीक है। जो उसका पिताजी था और भी माताजी लोग भी थे, बोला तो सब लोग थे। पिताजी ने क्या बोला, बूढ़ा व्यक्ति था वो, पिताजी ने बोला पोस्ट में क्यों, हम इतना सारा इतना लखनऊ से इधर तक इतना लगेज लेके आया, वो सब हम उठा के लेके जा सकते, ये स्वयं भगवान है। हाँ भागवत मतलब क्या है, इसको हम साथ में नहीं लेके जा सकते, इसको पोस्ट में भेजने क्या जरूरत है। बोला कौन लेगा, इतना वजन है, वजन है। अरे आप लोग नहीं लेगा, मैं लेगा। वो बूढ़ा व्यक्ति ले लिया और लेके गया, है कि नहीं। तो जो जानकारी है वो पैसा वजन कोई बहाना नहीं देखता है, है कि नहीं। ये प्रभुपाद जी का किताब इतना महत्वपूर्ण है, और पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, उसका सब परिवार पढ़ेंगे, कुछ ना कोई ना कोई भक्त बनेंगे, है कि नहीं, एक दिन नहीं तो एक दिन। इसलिए प्रभुपाद जी इसको ज्यादा बल देते हैं, पुस्तक वितरण, प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण में। तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी के लिए सहयोग करना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप अगर मेरे को चाहते हैं तो मेरा किताब का वितरण करो, तभी हम सोचेंगे कि आप मेरे को चाह रहे। तो ये सब हम किताब पढ़ने से, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने से, हाँ ये प्रचार सार है, इसको पढ़ने से हमको ज्ञान मिलता है। हाँ इसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग आया है, हाँ और इसी को भगवान का सेवा प्रचार करने के लिए आया है, और कोई उद्देश्य नहीं है, है कि नहीं। तो इसलिए इसको करना चाहिए। हरे कृष्णा। समय हो गया, इसमें कोई प्रश्न है किसी का? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी।